होता है इस वक्त, फिर दूसरी तरफ और देख लें, एक और रिपोर्ट सुने। ये तो मुझे, मेरा आईटी तो सबसे बड़ा दुख मुझे जब आईटी का होता है, जब बच्चे, जब से ये आईटी का इश्यू शुरू हुआ है मेरे लिए काफी जो है कंसर्न ये रहा है, क्योंकि मुझे मालूम है कि पाकिस्तान में गांव देहात छोटे छोटे शहरों में किस तरीके से बच्चे ऑनलाइन काम अपने अपनी था, उन्होंने कोई उनको ट्रेन नहीं किया गया, उन्होंने किसी तरीके से भी उस काम को यूट्यूब के थ्रू, टिकटॉक के जरिए या किसी इंस्टीट्यूट के जरिए लोगो बनाना सीख लिया, उन्होंने कोई ग्राफिक डिजाइनिंग सीख ली, उन्होंने कोई एडिटिंग सीख ली, उन्होंने कोई फोटोशूट करना सीख लिया, तो वो अपने कुछ दो चार क्लाइंट्स अगर उनको मिल गए, वो उनको महीने के जो हैं वो 200, 400, 500 डिपेंड के कौन किस लेवल पर काम कर रहा है, उनको डॉलर आ जाते तो उनको लगता है कि $400 भी अगर किसी को $500 आ जाए तो आप समझ सकते होंगे अगर 300 का डॉलर है तो कहां पहुंच जाता है। ठीक है, तो एक उसकी जिंदगी में तब्दीली आना शुरू हो गई थी, उसको थोड़ा सा लगा था कि हाँ यार शायद मेरे भी हालात बेहतर हो जाएंगे, मैं अपने क्लाइंट्स को 4-5 लोगों महीने के बना के देता हूं तो मुझे $200-$300 मिल जाते हैं, तो वो 9-10 हजार पाकिस्तानी बन जाते हैं आराम से मेरे, ना एक क्लाइंट के साथ भी मैं काम करता हूं तो मुझे 9-10 हजार पाकिस्तानी एक क्लाइंट से बन जाते हैं, अगर मेरे 3-4 क्लाइंट है तो मुझे अच्छे 40-50 हजार पाकिस्तानी रुपीज मेरे कम टाइम में एक स्किल्स के थ्रू मैं कमा लेता हूं। लेकिन आपने क्या किया भाई, फायरवॉल लगा लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, उनको भी आपने बंद कर दिया, आपने कोई कसर नहीं छोड़ी कि उनको किस तरीके से जो है वो आगे लेके जाना है या काम करना। दूसरी तरफ और देख लें, एक और रिपोर्ट पे मेरी नजर गुजरी, उसके बाद तो मुझे और समझ नहीं आया कि किस तरीके से ये कहां रास्ता ढूंढे, रोशनी कहां ढूंढे, ना उम्मीद नहीं है लेकिन मसाइल का इतना अंबार है कि हम कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से इसको, इसका सिरा ढूंढ सके। अब आपको मैं बताऊं कि बैगर्स पाकिस्तान की जो इंडस्ट्रीज है जिसमें हम बैगर्स को एक्सपोर्ट करते हैं, सोचे हम आईटी एक्सपोर्ट नहीं करते, हम सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट नहीं करते, हम बैगर्स एक्सपोर्ट करते हैं सऊदी अरब, इराक, ईरान, और पाकिस्तान में तो बैगर्स का आपको पता ही है कि माफिया कितना है। तो मैं एक डाटा देख रहा था, ये द प्रिंट की रिपोर्ट है, अगर मैं आपको इसलिए कोट कर रहा हूं कि मैंने ये रिपोर्ट उसमें भी देखी, अब ये इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता ये इंडियंस है क्या है, कहीं ना कहीं आगे पीछे नंबर्स होंगे, लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो मैंने पढ़ा वो द प्रिंट की रिपोर्ट है कि ओवरऑल कंबाइन पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है बैगर्स की, जिसमें लोकल बैगर्स यानी जो विद इन पाकिस्तान है और जो बाहर एज एन एक्सपोर्ट काम कर रहे हैं एज अ बैगर्स, उनकी जो इंडस्ट्री है इस वक्त, वो आप यकीन करेंगे कितनी है? आप, मैं, मेरा दिमाग इस पर जो है वो यकीन नहीं कर रहा कि इस 40 बिलियन, मोर देन $40 बिलियन US की ये बैगर्स की इंडस्ट्री है जो ये माफिया कह लें, ये कर लें, ये सालाना कमाते हैं, और आपकी आईटी की जो एक्सपोर्ट है मुल्क में, ठीक है, वो $2 बिलियन है, इससे ज्यादा नहीं होगी। सोचें, ये रोने का मकाम है, ये फिक्र का मकाम है कि हम, तभी तो वजीर आजम जाके फिर कहते हैं ना चूज बैगर्स नॉट बी चूजन, और ये वो अब भीख मांगने पहुंचे होते हैं, तो सर इससे बाहर निकलना होगा। कोई ऐसा कहते हैं ना कि हंगामी बुनियादों पर हमने सियासत को कुछ टाइम के लिए, मैं तो कहता हूं कि कुछ टाइम के लिए जो 8 बजे लेके 11 बजे तक ये प्रोग्राम्स आते हैं ना, जितने ये टॉक शोज आते हैं पाकिस्तान में मेन स्ट्रीम चैनल्स पे प्राइम टाइम पे, उन सबको बंद होना चाहिए, सबसे पहले बंद कर दें, फायरवॉल उन पर लगाएं, फायरवॉल लगा दें तमाम न्यूज उस पर जो आप अभी टाइम के लिए आप चीजों को रिवॉल्व करें, आहिस्ता आहिस्ता बच्चों को, यंग पॉपुलेशन को आप एजुकेट करें, आप उनको बताएं कि आपने जो है वो किस डायरेक्शन में जाना है, और जो एक डायरेक्शन में वो बेचारे जा भी रहे थे तो आपने उनकी डायरेक्शन भी जो है वो फायरवॉल लगाकर किसी तरीके से बंद कर दी, तो अब वो भी डायरेक्शन बेचारे नहीं कर पा रहे। तो मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है, ये जो भी यहां सुन रहे हैं, कि किसी तरीके से कोई ऐसा काम किया जाए, चाहे हम यहां से बैठ के करें या पाकिस्तान में जो लोग बैठे हैं वो इस तरीके से करें, कुछ करें कि हम अपनी कम से कम जो ये ब्रेन ड्रेन वाली बात है वो ना हो किसी का, क्योंकि हमें पाकिस्तान में इन यूथ की जरूरत है, ये वो हैं जो बाहर नहीं जाना चाहते। हम तो चले, मैं अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो मैंने तो बाहर, मैं जब मैट्रिक क्लास में था उस वक्त से मेरा एक टारगेट था कि मैंने अपना एक टारगेट बनाया कि मैंने जाना है, मैंने काम करना है, मैंने ये चीजें हासिल करनी है। ऐसे कई बच्चे पाकिस्तान में हैं जो सिर्फ इस वक्त बाहर सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि उनको वहां पर जो है वो सहूलियात मुहैया नहीं की जा रही, इसलिए वो मुल्क छोड़ रहे हैं। वो इसलिए नहीं कर रहे कि वो आमिर अहमद नहीं है, कि जिनको, जिसे जाना ही जाना था, जिसको शौक था, जिसने काम किया, जिसने सोचा इस पर कि नहीं जाना चाहिए। जाहिर है हर एक के पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं है, मैं शायद लकी रहा कि मैंने पढ़ लिया, कर लिया, रिसोर्सेज हो गई और अल्लाह ने यहां पहुंचा भी दिया, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परेशान हैं, जो बाहर निकलना भी चाहते हैं लेकिन वो फिर उसका गलत रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। तो इससे बेहतर है कि कि हम उनको सही रास्ता दिखाकर वहीं जहां वो बैठे हैं, जिस शहर, जिस गांव, जिस देहात में भी वो काम कर रहे हैं, उनको वहीं रिसोर्सेज देकर, उनको उनके स्किल के मुताबिक उनको वहीं जो है वो एम्पावर किया जाए, उनको उनकी लाइफ को जो है वो अपग्रेड करा दिया जाए। बल्कि हम क्या करा दें, वो खुद ही कर लेंगे, उनको सिर्फ टूल्स दे दिए जाएं, तो वो मुझे लगता है कि पाकिस्तान आगे बढ़ जाएगा। तो ये छोटा सा था मेरे जहन में कि मैं कल से 2-3 दिन से इस पर जो है वो काफी जो है वो कंसर्न था मेरा कि हम, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आने वाले 5-10 सालों में इन चीजों पर हमने कंट्रोल नहीं किया तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत डिजास्टर होगा। और जनाब, अगर पाकिस्तान में लोग ही नहीं होंगे तो आप सियासत किस पर करेंगे, बिजनेस किस पर करेंगे, किन से बातें करेंगे, किन के लिए टॉक शो करेंगे, जब ये चले जाएंगे कोई फायदा नहीं है। तो इस पर हमें सोचना चाहिए, तो आई होप कि इस पर आगे चलकर काम भी हो। चले जनाब, टॉप ऑफ द आवर का ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक के बाद आपको पता है खट्टी मीठी खबरें और गर्मा गर्म खबरें, क्योंकि खबरें जो है वो बहुत जरूरी होती है हमारी लाइफ की। नथिंग रॉन्ग विद द खबरें, लेकिन जाहिर है वो भी तो जिंदगी का हिस्सा है। चलें जनाब, ब्रेक ले लेते हैं टॉप ऑफ द आवर का, फिर वापस आते हैं। हमारा नंबर 416-620-1778।
यू आर लिसनिंग टू WTOR 770 AM यंगस्टाउन टोरंटो।
इस संदेश जरा ध्यान नाल सुनो, गवर्नमेंट ग्रांट बच्चों अते परिवारों वास्ते उपलब्ध है। अगर तुहाडी इनकम $60,000 तो घट है ते तुहाडे बच्चे 12 साल तो घट उम्र दे हन, तां तुहानू गवर्नमेंट तो $12,000 तो लैके $60,000 तक दी ग्रांट मिल सकदी है। ए पैसा तुहाडे अकाउंट विच 3 हफ्तिया दे अंदर अंदर आ सकदा है। ए गवर्नमेंट ग्रांट सर्विस ओंटेरियो, अल्बर्टा अते BC विच उपलब्ध है। होर जानकारी लई शावेज दे नाल 647-769-0241।
काश पैसे घर भेजना आसान और सुविधाजनक होता। CIBC ग्लोबल मनी ट्रांसफर के जरिए आपके प्रियजन उसी दिन कैश पिकअप सर्विस के साथ लोकल मनी ग्राम एजेंट से कैश उठा सकते हैं। इसका मतलब है कि वे कैश उसी दिन ले सकते हैं जैसे कि ये दिन और ये दिन। अगर आप खुशियां बांटने जा रहे हैं तो $0 CIBC ट्रांसफर फी के साथ कैश पिकअप सर्विस के जरिए भेजें। CIBC.com/cashpickup पर जाएं। शर्तें और CIBC फॉरेन एक्सचेंज रेट्स लागू। CIBC, एम्बिशंस मेड रियल।
क्विक ट्रक लूप ट्रक्कर वीरा दा धन्यवाद करते हुए इस साल भी 12 सितंबर नू अपनी नैपनी लोकेशन ते ट्रक ऑयल चेंज से देंगे $125 तक का डिस्काउंट। जी हाँ, सही सुनिया, अप टू $125 दा डिस्काउंट, फ्री ट्रक ग्रीस ते फ्री बारबेक्यू। क्विक ट्रक लूप एग्जिट 579 हाईवे 401 से पाओ 12 सितंबर नू $125 तक का डिस्काउंट। 519-622-0660 519-622-0660। क्विक ट्रक लूप नैपनी लोकेशन, कुछ शर्तें लागू।
ट्रक का घूमता पहिया कनाडा की मईशत की तरक्की का जामिन। आपका ट्रक सड़कों पर राज करे और कनाडा की मईशत तरक्की की राह पर गामजन रहे। ट्रक मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक, ट्रक की बेहतरीन सर्विस के लिए क्विक ट्रक ल्यू थ्रू आउट ऑन्टेरियो। नो अपॉइंटमेंट नीडेड, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, वन स्टॉप शॉप। अब तीसरी लोकेशन एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नैपनी। क्विक ट्रक ल्यू 519-622-0660। quicktruckcube.com।
साढ़े कोल योजना है जो कि ओंटेरियो नु जोड़ रही है। रोजाना आवाजाही नु कटाउन लई नवीं सड़कां ते हाईवेज दा निर्माण अते वध रहे इलाकियां नु जोड़न लई पब्लिक ट्रांसिट दा विस्तार। एह सब इस लई तां जो तुसी तेजी नाल, सुरक्षित अते आसानी नाल आउण जाण कर सको। ontario.ca/builds ते जाके होर जाणो। इस दी अदायगी ओंटेरियो सरकार वल्लों कीती गई है।
इस महीने मेरी सेविंग $400 हुई है।
मेरी सेविंग $350।
मेरी सेविंग सिर्फ $100।
और मेरी सेविंग सबसे ज्यादा हुई है, मैंने सेव किए हैं $1,775।
क्या चमत्कार किया, मुझे भी गुर सिखाओ ना।
भाई बात सादा सी है, हमारे पास 2 गाड़ियां और 1 घर है, और इन सब की इंश्योरेंस मिलाकर मैंने जबरदस्त सेविंग की है। और ये जादू किया है ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह ने। आप भी अपनी गाड़ी और घर के इंश्योरेंस में खूब सेविंग कर सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह 647-290-3773।
टीम 4 एंटरटेनमेंट अते ट्रांस 99 लॉजिस्टिक्स पेश कर देने पंजाबी विरसा 2024 टोरंटो शो सैटरडे 7 सितंबर नू द थिएटर एट ग्रेट कैनेडियन कैसीनो रिजोर्ट टोरंटो।
ਵੁੱਡਵਾਈਨ ਮਾਲ ਅਤੇ ਵੁੱਡਵਾਈਨ ਰੇਸ ਟ੍ਰੈਕ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਮਨਮੋਹਨ ਵਾਰਿਸ, ਕਮਲ ਹੀਰ ਅਤੇ ਸੰਤਾਰ। ਟਿਕਟਾਂ ਲਈ ਟਿਕਟ ਮਾਸਟਰ .ca ਤੇ ਜਾਓ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ ਟੀਮ ਫੋਰ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ 905-793-1234।
10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੈਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਏ ਨੂੰ, ਪਰ ਤੂੰ ਇਗਨੋਰ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਫੋਨ ਇਗਨੋਰ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਆਪਦਾ ਤੇ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, ਫੇਰ ਨਾ ਕਹੀ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਨੀ।
ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀਆਂ ਸੌਫਟ ਆਨ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਰਾਈਜ਼ ਤੇ ਹੈ। ਲਿਬਰਲਸ ਨੇ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਤੇ ਪੈਨਲਟੀਜ਼ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਐਫ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬ੍ਰੌਟ ਯੂ ਬਾਏ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਐਫ ਐਂਡ ਕੈਨੇਡਾਜ਼ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ।
ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸੋਡੀ ਫਰਨੀਚਰ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਉਹ ਫਿਰ ਬਣੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਸੈੱਟ, ਸੋਫਾ ਸੈੱਟ, ਮੈਟ੍ਰੇਸਿਸ, ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ, ਡੈਕੋਰੇਟਿਵ ਆਈਟਮਸ, ਗੱਲ ਕੀਜੀ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਸੋਡੀ ਫਰਨੀਚਰ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਨੋ ਵਿਆਜ।
142 ਕੈਨੇਡੀ ਰੋਡ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, 9058747171।
Pakistan paise bhejna ab hua aasan. Use Limpay for international transfers. Canada se Pakistan paise minton mein pahunchte hain. Barah rast jisko aap bhejna chahe. Behtareen exchange rate aur paise pahunche minton mein. Download from Google Play or Apple Store. Code Pakistan istemal karne pe aapko mile $10 ka cashback. Apne phone se barah rast bank account mein paise bhejna shuru karein minton mein aur bina kisi fees ke. Limpay.
770 AM ਦੀਆਂ ਨਸ਼ਰੀਆਤ ਸੁਣਨ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਖਬਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਨਾਲਿਸਿਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈ ਆਵਾਜ਼ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਐਪ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਈ ਆਵਾਜ਼ .com, ਲੋਕਲ ਨੰਬਰ 6478724900।
ਚਾਂਦਨੀ
ਬੈਂਕੁਇਟ ਹਾਲ,
ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਚੋਇਸ, locations, sound system, innovations, Chandni Banquet Hall.
30 years of hospitality experience, corporate event, exhibition, expo or any celebration.
Sare package ka naam, Chandni Banquet Hall. Aaj hi call kijiye, 437-218-8734, chandnihalls.ca. Chandni.
ویلکم بیک تمام سامعین جو ہمیں 770 AM ڈائل پر سن رہے ہیں. میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور دوست, نہیں صرف ہوسٹ تک صحیح ہے بھائی, دوستی ہوستی جب ہوگی جب دیکھا جائے گا. ہے آواز آ رہی ہے نا؟ بالکل ٹھیک آ رہی ہے, وہ میں نے مائک غلط سے آن کر دیا تھا. اور 6:12:35 36 ہو گئے ہوں گے, اب جب میں وہاں ادھر دیکھ رہا ہوں تو 36:37:38 ہو گئے ہوں گے. اور آج تو لانگ ویکینڈ ہے, نئی خبریں سنیں گے تو کیا ہو جائے گا. نہیں سننی ہے خبریں تو نیند نہیں آتی نا, انہیں رات بھر مسئلے مسائل جو ہیں, جتنی محنت سے خبریں تیار کرتی ہیں اس پہ تو ان کو سلوٹ جاتا ہے. اس پر تو ان کی ایک لاٹری کھلنی چاہیے, لیکن وہ نہیں کھل رہی, پتہ نہیں کیوں نہیں کھل رہی ہے. میرے حساب سے جتنی محنت یہ کرتی ہیں ان کی کوئی نہ کوئی اب تک کھل جانی چاہیے تھی. لیکن بہرحال ایسا کرتے ہیں, پروگرام میں ان کو شامل کر لیتے ہیں یا جوڑ لیں. جوڑ لیں, نہیں نہیں شامل, مجھے کہا گیا شامل کریں شازیہ جی کو, جوڑے نہیں ان کو. تو شازیہ جی کو پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں اور ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, کیسی ہیں آپ؟ بڑی مسکرا رہی ہیں.
WS. اور تم نے جو ہے نا میرا دل کا غم چھیڑ دیا. تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو, جو ہم سے ابھی بھی محنت نہیں کرتے, بٹ جسٹ بیکاز آف دا فیکٹ دے آر ان پاکستان, دے آر سو پاپولر. میں جیسے تم دیکھ رہے تھے نا ویکینڈ کے اوپر ٹاک شوز, میں بھی دیکھ رہی تھی, اینڈ آئی واز امیزڈ واٹ نان سینس گوز آن دوز टॉक शोज और एक बंदे के पास कोई नॉलेज
की बात नहीं है।
देखो इन्फॉर्मेशन इज डिफरेंट, नॉलेज इज डिफरेंट। इन्फॉर्मेशन तो आप सारा दिन टीवी देखते रहे, इन्फॉर्मेशन ही इन्फॉर्मेशन है। जीरो नॉलेज है लोगों के पास, जीरो नॉलेज है। और जिस वक्त मैं हम लोग होते थे वहां पे पिंडी इस्लामाबाद में, आई वॉज सेक्रेटरी जनरल ऑफ जो है जर्नलिस्ट एसोसिएशन ओवर देयर, ये जो बैक बेंचर्स होते थे ना जिनको हम घुसने भी देते थे प्रेस क्लब में, वो अब इतने बड़े खलीफे बने वहां पे बैठे हुए हैं कि मैं उनकी शक्लें देखती हूं कि यार जस्ट बिकॉज दे स्टेड इन पाकिस्तान तो अब हर चैनल पे जो चैनल करें उनकी बूथी आपको नजर आ रही होती है। अच्छा एक तो ये बात, दूसरी बात ये है कि आपने ये तो खैर मुझे बड़ा छेड़ दिया, अब मैं घर में रोती रहूंगी इस बात पे क्योंकि वाकई मेहनत कर करके जान चली गई है और लॉटरी क्या कोई भी ना किस्मत
हमें तो बंद करनी पड़ गई,
बंद करनी पड़ गई बिल्कुल कि छोड़ो इतना पैसा लाया कर दिया बहुत, वरना हम तो मॉर्गेज अपनी पे कर चुके हैं,
पूरी एक मॉर्गेज चली गई
चली गई नहीं निकली। अच्छा आपने जो डेटा दिया ना कि भाई वो पाकिस्तान से जो है वो जा रहे हैं, पाकिस्तानी जो है चलो ठीक है पॉपुलेशन का भी हिसाब होता है, 62% पाकिस्तानी यूथ वॉन्ट्स टू लीव पाकिस्तान, बट आपको इंडिया के तो पता है इंडिया में तो बड़े जबरदस्त हालात हैं, 75% एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू देयर ओन ब्यूरो का डाटा जो है, ये मैंने कहीं इंडिया वो पाकिस्तान से या इंग्लैंड से या अमेरिका उनका खुद का डाटा कहता है 75% इंडियंस विश टू लीव जो है वो इंडिया, सिमिलरली 75% बांग्लादेशी विश टू लीव बांग्लादेश, इसी तरह जो है यूके 78% ब्रिटिश पीपल विश टू लीव इंग्लैंड एंड सेटल समवेयर एल्स, ये जो हमारा कनेडा है कनेडा में, और पॉपुलेशन का आप जरा वो देखें अगेन अगेन परसेंटेज का हिसाब है क्योंकि कराची जितनी पॉपुलेशन है, 18 से 34 के बीच में जो बच्चे हैं 30% कैनेडियंस डोंट वांट टू लिव इन कैनेडा,
ठीक हो गया
ठीक है जी। इसी तरह जो नेपाल है, नेपाल की तो और भी हालत खराब है, 1700 पीपल इन नेपाल लीव एवरी सिंगल डे,
बिल्कुल ठीक है
ठीक है जी। तो इट इज अ ग्लोबल फिनोमेना। अगर आप फ्रांस में देखेंगे तो फ्रांस में भी कंट्री लाइक फ्रांस एंड जर्मनी वहां से भी, और अगर यू बी वेरी सरप्राइज अगर आप इन सब लोगों से जो क्वेश्चन किए हुए हैं वहां के लोगों ने जो ये सर्वे किए हुए हैं, ये जो उनके अपने नेशनल ब्यूरोज हैं, जब उन्होंने पूछा कि तुम लोग
क्यों जाना
इंडिया में पूछा तुम क्यों जाना चाहते हो, जी कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई नहीं है, बांग्लादेश में पूछा सेम, पाकिस्तान में पूछा सेम, नेपाल में पूछा सेम, इंग्लैंड में पूछा सेम, उन्होंने कहा जितनी हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग इंग्लैंड के अंदर है हम तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते हैं यहां पे रहना, सो वी आर मूविंग आउट। सो इट इज नॉट जस्ट पाकिस्तान का फिनोमेना, हम तो 62% जैसे मैंने आपको बताया है, इंडिया एंड बांग्लादेश में 75% यूथ विश टू लीव देयर कंट्री।
अच्छा पाकिस्तान मैं अग्री, जो आपने डेटा दिया ना मैंने बिल्कुल इसको भी,
और ये मैंने बांग्लादेश के ब्यूरो से, इंडिया के ब्यूरो से, ब्रिटेन के उससे, ये मैंने कोई रैंडमली नहीं
उठाया। थोड़ा डिफरेंस पाकिस्तान में और जो दूसरों से, मैं एज एन पाकिस्तानी देखता हूँ, अच्छा पाकिस्तानी जितनी यूथ है ना साजिद, उनको इस बात से परवाह नहीं है कि यहाँ लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो इतने हाई हो गए इस वजह से मैं जा रहा हूँ। आप यकीन करें अभी चली जाएं, कल चली जाएं, परसों जब भी आपको लगे आप पाकिस्तान के किसी से सर्वे करा लें, बात कर लें लोगों से, वो कहते हैं कि हमें जो काम इस वक्त हम यहां करना चाहते हैं
वो नहीं कर सकते,
जो हमारा स्किल सेट है, यानी मैं एक लोगो बनाता हूं या मैं एक जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, वो मुझे यहां पर अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जा रही हैं, मुझे बेसिक नेसेसिटी जो कि इंटरनेट है वो नहीं दिया जा रहा, तो मैं उड़ के जो है दुबई जा रहा हूं, टर्की जा रहा हूं, ठीक है
मैं जा रहे हैं, मोस्टली लोग
बहुत जा रहे हैं, यूरोपियन जो छोटी कंट्री है एस्टोनिया इस तरह की, वहां बहुत
अल्बेनिया
बहुत जा रहे हैं लोग, इसीलिए नहीं कि जो लिविंग कॉस्ट, वो कहते हैं कॉस्ट तो हम बेयर कर लेंगे लेकिन हमें काम तो करने दें,
क्योंकि अगर $500 मिल रहा है उनको,
मैं आपसे बता रहा हूं
कैनेडियन या अमेरिकन तो 1,00,000 रुपया है ना बैठे बैठे घर में, 1,00,000 रुपया उनको मिल रहा है,
वो ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान में अगर रहकर डॉलर लेकर आते हैं हमें ज्यादा सूट करता है, 300 के करीब यूएसडी डॉलर है सम हाउ 280-290, हम राउंड 3 पे बात कर लेते हैं,
50,000 डॉलर रुपए,
तो अगर कोई 1,000 डॉलर बनाता है तो वो पाकिस्तानी 3,00,000 रुपए हो गए,
2,80,000
मैं तो 300 से कैलकुलेट कर रहा हूँ ना, अगर 300 पे लॉक करते हैं बिकॉज फॉर सेक ऑफ डिबेट कि 300 पाकिस्तानी जो है वो यूएसडी डॉलर,
बहुत भी कम कर लेंगे, 2,50,000 तो वो कमा ही रहेगा,
2,50,000 कमा लेगा
वो बाहर,
वो कहते हैं कि यही $1,000 या $1,200 में बाहर जाके कमाऊंगा तो मैं फकीर ही रहूंगा,
फकीर ही रहूंगा,
उसकी ये सोच है। वो दूसरे मुल्कों की तरह बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल की तरह उसकी पाकिस्तानी यूथ इज वेरी स्मार्ट अल्हम्दुलिल्लाह। वो ये कहता है कि मुझे $1,000 पाकिस्तान में कमाने दें, मैं पाकिस्तान को भी आगे ले जाऊंगा और खुद भी एक साल के अंदर खुद भी अपना कच्चा घर पक्का करा लूंगा।
हाँ,
साइकिल से मोटरसाइकिल पे आ जाऊंगा। हाँ, मोटरसाइकिल से गाड़ी पे आ जाऊंगा।
बिल्कुल,
विद इन फाइव इयर्स।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
ये डिफरेंस है।
स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट है यूथ।
उनको बाहर इसलिए नहीं जाना कि यार बाहर
मेरे भाई साहब जो है, माय भाई साहब सीएमओ स्टार्स में, तो आपको पता है कि जो उनके बैक ऑफिस में जो शो रील्स और ये सब चीजें कर रहे हैं, ये लाहौर के लड़के और लड़कियां हैं। और आप सोचें कि लाहौर का उनका पता नहीं एक छोटा सा ऑफिस है, जो कि एक लड़के या लड़की ने, जो उनकी शायद पता नहीं एनेक्सी थी या क्या थी, उसी को ऑफिस में कन्वर्ट किया हुआ है, उसमें बैठ के वो तीन चार फ्रेंड्स कर रहे हैं। और आप सोचें कि ये इंटरनेशनल ब्रांड है जिसका वो लोग लाहौर में बैठ के काम कर रहे हैं। हाँ, तो आप सोचें कि वो इंटरनेशनल कंपनी उनका स्टैंडर्ड एक्सेप्ट कर रही है ना, कि ये वाकई इंटरनेशनल लेवल का काम हो रहा है, तो वो कर रहे हैं ना, वो कर रहे हैं। और वो बच्चे सब, मेरा भाई कहता है कि दे आर ऑल इन थर्टीज, इतने यंग बच्चे हैं,
30 to 45 के लोग। इस वक्त मैं रिपोर्ट देख रहा था फॉरेन ऑफिस के बाहर, ऐसे लाइन लगी हुई थी जैसे यहाँ बॉक्सिंग डे के बाहर ना स्टोर खुलने से पहले या ब्लैक फ्राइडे पे स्टोर से बाहर हजारों बंदा जो है वो बाहर खड़ा होता है लाइन।
और वो जो आपकी, आप बता रहे थे द वायर की, आपने द प्रिंट की, आपने जो स्टोरी पढ़ी थी कि जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो 42 बिलियन डॉलर
की इंडस्ट्री
है। की इंडस्ट्री है। हाँ, वो एग्जैक्टली मैं आपको डेट बताती हूँ, वो जुलाई 11th को अभी उन्होंने ये जो है रिपोर्ट, क्योंकि मैं तो पढ़ती प्रिंट और वो द वायर हूँ ना, दो ये मैं पढ़ती हूँ, मोस्टली फिर स्क्रोल पढ़ लूंगी या हिंदुस्तान टाइम्स, क्योंकि बाकी तो सब आपको पता ही है गोदी मीडिया बन चुके हैं। तो ये जब मैंने रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी, तो मैंने इसका थोड़ा सा मैंने खुलासा जो था उस वक्त किया था, एग्जैक्टली ऑन 11th जुलाई आई थी रिपोर्ट, एंड द नेक्स्ट डे आई गेव दिस रिपोर्ट के उसमें जो अरब कंट्रीज हैं वो बहुत ज्यादा एतराज कर रहे हैं कि एक तो आपके लोग नमाजें पढ़ने जाते हैं तो लंबी लंबी नमाजों से वापस नहीं आते हैं, उसके बाद आपके लोग जो है यहां पे आके बेगिंग करते हैं। और ये तो मेरे अपने साथ हुआ है और मेरे बेटे के साथ। हम लोग जिस वक्त मदीना में पहुंचे तो एक आदमी रोता हुआ आ गया, ओ जी मेरे बच्चे के पास दूध पीने के लिए पैसे नहीं है और मेरी जेब कट गई है, मैं इधर आया हूं पैसे दूं। हाउएवर जो हमारा ड्राइवर जो हमें मक्का से लेकर मदीना आया था, उसने हमें ऑलरेडी बता दिया था कि इनसे बचना, ये झूठ बोल रहे हैं, ये आजकल सऊदी अरेबिया में बहुत सारे जो है बैगर्स हैं। तो अरब कंट्रीज ने ये पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस को, ये मेरी पूरी रिपोर्ट थी जो मैंने की थी, कि उन्होंने पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस को बोला है कि हमको नहीं चाहिए अब पाकिस्तानी आपके यहां पे, क्योंकि ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। फिर सॉरी टू यूज दिस थिंग, नौसरबाजी कर रहे हैं, लड़कियां देखते हैं वहां पे जाके नई नई हर तरह की, उनके फिर पीछे जो है वो पड़ जाए, नौसरबाजियां हैं, नमाजों के लिए लंबा लंबा जा रहे हैं, बेगिंग कर रहे हैं, तो एज अ रिजल्ट हमको नीचे। और मैंने तो आपको अपना भी एक्सपीरियंस बताया था कि जब आज से 26 साल पहले मैं गई थी हिल्टन होटल में, हम ठहरे थे, क्या वहां से लेके अभी तक जितने हमें वहां पे काम करने वाले लोग सऊदी में नजर आते थे सब पाकिस्तानी होते थे। इस दफा जब हम ये जो बड़े बड़े होटल्स में, ये क्लॉक टावर दूसरी जगह पे हम गए, सब बंगाली लड़के लगे हुए हैं, अंग्रेजी उनको आती है, प्रेजेंटेबल है, हार्ड वर्क पे बिलीव करते हैं, नो बेगिंग, नो मस्खरा, नो नथिंग। तो ये जो शिफ्ट आया ना, एंड दिस इज वन कंट्री,
सही कह रही है, एग्री
100%। अच्छा, दूसरे भी जो अरब कंट्रीज हैं उनके अंदर भी, मेरी अभी कजन का बेटा है, उसको कतर में जॉब मिली है, वो वहां पे गया, उन्होंने इतना माशाल्लाह वो लाइक था कि आप सोचे, पाकिस्तानी यूथ की बात है ना, कि उन्होंने पाकिस्तान से हायरिंग की है उस लड़के की, तो वो वहां पे गया, वो कहता है जी यही हो रहा है कि कभी आप मुझे, हमें कहते होते थे कि जी पाकिस्तानी कतर में या कुवैत में या उधर बैठे हुए, कहते हैं आप कोई पाकिस्तानी ज्यादा नहीं नजर आते, दे डोंट वांट टू वर्क विद पाकिस्तानी, इसलिए कि वो कहते हैं जी कि ये आके ड्रामेबाजियां करते हैं। जुमे की नमाज के चार फर्ज हैं जो आपके ऊपर फर्ज हैं, ठीक है, आप वो फर्ज नमाज पढ़ें और आप वापस आए। हमारे मजहब के अंदर है, कुरान के अंदर ये है, जब जुमे की आपको नमाज का वक्त आए अल्लाह की जमीन पे फैल जाओ, लेकिन उसके बाद जो है फिर आपने वापस काम पे आना। ये क्या करते हैं, बस जुमे की नमाज के लिए निकल जाएंगे अपने मुल्क की तरह, बस ये आना नहीं, आप घर जाके खाओ पियो और सो जाओ, ऐसे नहीं चलता, इंटरनेशनल मार्केट ऐसे नहीं चलती ना,
बिल्कुल ठीक,
ऐसे नहीं चलती। तो दैट्स वाई ये हमारी अपनी खुद की गलतियां हैं,
नहीं सही करनी हो जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ, सही,
बस और ये होएंगे, ये बच्चे करेंगे इंशाल्लाह। तो इसलिए जो ठीक है, तो मुझे आमिर का तकलीफ जो है और दर्द एज अ पाकिस्तानी समझ आ सकती है, ये दर्द हम सबको है, बट आई एम वेरी होपफुल कि यही वो बच्चे हैं जो कि इस मुल्क को ठीक करेंगे।
नहीं 100% मैं कहता हूँ कि ये इनका लीडर, ये 65% आप कह रहे हैं जो 6 नंबर पर हमें, दुनिया के 6 नंबर पर यूथ पॉपुलेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये हाँ मतलब ये हमारी स्ट्रेंथ है ना,
स्ट्रेंथ ह्यूमन कैपिटल,
ह्यूमन कैपिटल स्ट्रेंथ, इसको समझे, ये स्ट्रेंथ है। बहुत सारे तो मुल्क हमारे नीचे दबके मर जाते हैं, उनकी पॉपुलेशन ही नहीं है।
नहीं, और वो खत्म होते जाएंगे, जैसे जापान में और चाइना में। अब
साल एक 100 साल के लोगों की
जापान के अंदर जो है, अब वो आपको पता है पैसे दे रहे हैं कि खुदा के लिए दो बच्चे पैदा करो, क्योंकि यंग कपल्स जो है बच्चे भी पैदा कर रहे थे। और जो चाइना के अंदर कर्ब्स थे कि आपने एक ही बच्चा पैदा, अब उन्होंने इजाजत दे दिया कि नहीं भाई भाईजान उन कर लो इस वास्ते के सारी। ये तो हमारी तो बड़ी वाकई, अब मुझे आपकी बात बिल्कुल अच्छी लगती है, ये कि ये जो आपका ह्यूमन कैपिटल होता है ना, ये आपकी स्ट्रेंथ होता है। इसी स्ट्रेंथ पे इंडिया अभी तक चल रहा है, इसी स्ट्रेंथ
exactly, यही तो मेरा मोटिव है।
हाँ,
कि इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ
उसका ह्यूमन कैपिटल है, इसीलिए तो वो दुनिया के हर हिस्से में,
दुनिया का बड़े से बड़ा कॉर्पोरेट बिजनेस इंडिया जाता है या चाइना जाता है।
कंज्यूमर मार्केट,
कंज्यूमर मार्केट है,
इतनी बड़ी कंज्यूमर मार्केट है। और इंशाल्लाह पाकिस्तान की
1.2-1.3 बिलियन कंज्यूमर मार्केट, ह्यूज।
हम भी हैं कोई तो, कितने हैं,
230 मिलियन
है। हाँ हाँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नहीं नहीं, भी बच्चे जो है ना, ये नॉनसेंस बर्दाश्त करने को तैयार
नहीं करेंगे, उठा के बाहर फेंक देंगे,
उठा के फेंकेंगे इन सबको इंशाल्लाह। एंड पाकिस्तान विल इंशाल्लाह
हमारे बच्चे फोन आ जाए।
अच्छा जी, दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय लेम्फाई। लेम्फाई आपको पता है इंटरनेशनल ट्रांसफर्स के लिए आप यूज करते हैं। अगर आपको $250 अगर आप भेजेंगे, अगर आपके पास है $250 सीख है, और अगर आप भेजना चाहते हैं पाकिस्तान में, उसमें से $30 तो आपको कैशबैक मिल जाएगा ट्रांजैक्शन पे, ठीक है जी। तो आप बिल्कुल जीरो ट्रांसफर फी पे ये आप भेज सकते हैं। डाउनलोड कर लें लेम्फाई ऐप अपने एंड्रॉयड और एप्पल पे, और जनाब एंजॉय का मजा लें, क्योंकि इमीडिएटली आपके पैसे वहां पहुंच जाएंगे। दूसरा, हम आपको बता रहे हैं टैलस कूडो स्टोर, इनकी जो प्रमोशंस हैं 4 तारीख तक चलेंगी, तो यानी 4 सितंबर तक चलेंगी। आपको अगर इनके अच्छे ये डील्स लेने हैं, 50 GB का $39 का कूडो का, और टैलस का 100 GB का $50 का, और कूडो का इंटरनेट जो है 100 Mbps ये $30 में मिल जाएगा। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल 905-800-1615। और जनाब QTL 12 सितंबर को ये अपना 1 डे ऑयल चेंज स्पेशल कर रहे हैं, और उसमें वो कह रहे हैं जी $125 ऑफ ले लें नेपनी, लेकिन लोकेशन पे नेपली लोकेशन आपने याद रखना है, एग्जिट 579 हाईवे 401। और आप इधर जरूर जाएं और फ्री बारबेक्यू का एंजॉय का मजा लें, ठीक है जनाब। अच्छा जी, हम आप अपनी खबरें शुरू करते हैं। तो मैं आपको बता दूं जी, ट्रूडो साहब के साथ हुई बड़ी बुरी। ट्रूडो साहब गए अपने कैनू ट्रिप के ऊपर सेंट मरीज रिवर के ऊपर विद ब्रैड रॉबिन्सन, और वहां पे जो थे उनके साथ एक CEO भी थे इंडिजिनस लेट थ्राइव टूर्स के, जिन्होंने ये सारी ऑर्गेनाइज की थी। ये जो है उसमें फोटो अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी रही, और वहां पे क्या हुआ कि वहां पे एक आदमी भड़क गया, बहुत ज्यादा भड़क गया एक आदमी। अच्छा, ये सारों के साथ जब लोगों को दे रहे थे डोनट्स, दे रहे थे हाई एंड, उसके साथ शेक कर रहे थे और उनसे पूछ रहे थे कि आपकी फैमिलीज कैसी है, बच्चे कैसे हैं, तो लोग बड़े खुशी खुशी इनके साथ तस्वीर खिंचा रहे थे। लेकिन एक आदमी जो है उसी वक्त अपना वो जो है शिफ्ट के लिए आया था, 2251 का टी शर्ट उसने पहना हुआ था, लोकल 2251 का, वो जिस वक्त आया और ट्रूडो साहब ने उसके साथ हाथ मिलाने की कोशिश की तो वो बड़ा भड़क गया। यहां पर यह था जो अल्गोमा स्टील थी इसके ऊपर थे ये जो ये बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने कहा जी कि मैं आपसे हाथ नहीं मिलाऊंगा। तो उन्होंने कहा भाई तुम क्यों अपसेट हो, ट्रूडो साहब ने पूछा। उन्होंने कहा जी कि तुम जो है हमारा ख्याल नहीं कर रहे। तो पीएम ने कहा कि भाई आपके लिए तो मैंने नेशनल डेंटल केयर प्रोग्राम शुरू किया, और चाइनीज स्टील सर टैक्स मैंने अब किया है, ताकि आपकी ये जो अल्गोमा स्टील है इसको हम प्रोटेक्ट करें, कैनेडियन जॉब्स को करें, 25% टैरिफ्स जो हैं हमने लगा दिए हैं उनके ऊपर, ताकि आपको अच्छी जॉब्स मिले। उसने कहा जी तुम जो भी कर रहे हो उसका मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा है, मैं तो अपनी जेब से डेंटल केयर भी कर रहा हूं, और मैं तो डॉक्टर जो है मेरे पास इधर है ही नहीं डॉक्टर्स जो हैं। और वो कहते हैं जी कि लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी है, तो एक साल ही अब तुम्हारे पास रह गया ट्रूडो साहब, मुझे नहीं लगता कि अगले साल मैं तुम्हारी शक्ल देखूंगा। और जो है उसके बाद ट्रूडो साहब ने फिर भी उसको कहा कि मेरे से हाथ मिला लो फॉर द सेकंड टाइम, लेकिन वो हाथ उनके साथ शेक किए हुए चला गया। तो विच मीन्स के जरा थोड़ा सा एंगर जो है वो लोगों में आ रहा है, लेकिन आई मीन व्हाट एल्स डू यू एक्सपेक्ट, 9 ईयर्स ऑफ लिबरल रूल, तो उसमें जाहिर है कुछ लोगों का तो हमेशा डिसकंटेंट रहेगा, तो अब शायद लोग जो है वो चेंज देखना चाहते हैं। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो है पेब्लो रॉड्रिगेज़, वो अब कह रहे हैं जी कि ये जो वीआर ट्रेन के जो पैसेंजर्स के लिए डिले आ गया था 10 आवर्स का, उसके लिए मैं फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा कि ये इतना ज्यादा डिले जो है वो क्यों आया है। ये आपको पता ही है कि लॉन्ग वीकेंड था और लोग जो थे क्यूबेक्स में से जा रहे थे, लेकिन वहां पे ये स्ट्रैंडेड रह गए, और ये जो ट्रेन थी ये ब्रेक डाउन कर गई थी बिटवीन मॉन्ट्रियल, और उसमें उन्होंने कहा जी कि 2 मैकेनिकल इसके अंदर इश्यूज आ गए हैं। हालांकि वीआर रेल वालों ने कहा कि हमने लोगों को जो है खाना दिया, स्नैक्स दिए, पानी दी, और जो उनको फिर जिस वक्त वो ट्रेन ठीक हो गई तो वो जा रहे थे, तो کیونکہ فائر ڈپارٹمنٹ کو بلانا پڑا تھا لوگوں کو ٹرانسفر کرنے کے لیے دوسری ٹرین کے اوپر, تو وہاں پہ بھی ہم نے ان کو کھانے بھی دیے, ایڈیشنل پانی بھی دیا, ان کا ہم نے خیال وال بہت رکھا, لیکن لوگوں نے کہا جی کہ نہیں ہمیں بڑی تکلیف ہوئی. 10 hours از اے لانگ ٹائم آف کورس, اور وہاں پہ نہ تو الیکٹریسٹی تھی, نہ اے سی تھے, نہ واش رومز جو تھے وہ سب کچھ شٹ ڈاؤن کر دیے تھے کہ جی ہم ریپیئر کر رہے ہیں, تو لوگوں کو بہت زیادہ وہاں پہ پرابلمز آئیں. تو اب پیبلو روڈریگز صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ول انویسٹیگیٹ اور آفٹر ریویو کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ لوگوں کو جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ کیا ہے. یہ واقعہ جو ہے سیٹرڈے کے دن ہوا تھا, اور لوگ جو تھے وہ سنڈے منڈے دو دن جو ہے وہ جانا چاہتے تھے چھٹیاں منانے, لیکن ان کی چھٹیاں پھر خراب ہوئی. آج تھا جناب لیبر ڈے, لانگ ویکینڈ, اور بہت سارے بزنسز اور جو سروسز تھی وہ آج کلوز تھیں. بہت سارے جو گروسری سٹورز تھے زیادہ تر وہ بند تھے, ایکسپٹ فار فیو پرائیویٹ بزنسز جیسے کہ ربا وغیرہ وہ ہیں. کچھ جو شاپرز ڈرگ مارٹ اور ریکس آل کی جو لوکیشنز تھیں, بیئر سٹور, وائن ریک لوکیشنز, وہ کچھ ان میں سے اوپن تھے, زیادہ تر بند تھے. ایل سی بی او, بینکس, گورنمنٹ آفیسز سب کلوز تھے, انکلوڈنگ کچھ لائبریریز جو تھیں. ٹی ڈی سی جو تھا وہ ہالیڈے کے اسکیڈول پہ چل رہا تھا. گو ٹرانزٹ میٹرو لنکس جو تھا وہ سنڈے کے اسکیڈول پہ چل رہا تھا. ڈفرنس کاربرو ٹاؤن سینٹر, فیئر ویو, شیئر وے گارڈنز, ڈان ملز, یارک ڈیل مال, یہ سارے مالز کلوز تھے. تھاؤزنڈز آف لوگ جو تھے آج ڈاؤن ٹاؤن ٹورنٹو کے اندر وہ لیبر ڈے پریڈ کر رہے تھے, اور اس کی وجہ سے بہت ساری جو روڈز تھیں وہ صبح 7 بجے سے ہی بند کر دی گئی تھی, ٹریفک کو ڈائیورٹ کیا گیا تھا, بہت سارے ڈیلیز آ رہے تھے, اور پولیس بار بار موٹرس کو جو ہے ایڈوائز کر رہی تھی, اپنے سوشل میڈیا پہ ڈال رہی تھی کہ یہ کلوجرز کی وجہ سے اپنے گھر سے دیکھ کے نکلیں کہ آپ جو ہے پھنس سکتے ہیں, اور آپ کے لمبے جو ہیں آپ کو گاڑی کے اندر ہی بیٹھنا پڑے گا, ڈیلیز ملیں گے. تو اس لیے آپ پلان کر لیں, پبلک ٹرانزٹ لے لیں, اپنی گاڑیوں میں مت آئیں. ٹی ڈی سی جو تھا اس نے بھی کچھ جو اپنے پھر روٹس تھے ان کو ڈائیورٹ کیا تھا تاکہ اس جو پیریڈ ہے اس کو اکوموڈیٹ کیا جا سکے. تو آج جو ہے چھٹی کا ایسا ماحول تھا. یونائٹیڈ نیشنز کی جو ایجنسی ہے جو کہ ریفیوجیز جو پیلسٹائن سے ہیں جن کا کہ وہ خیال کرتی ہے, انہوں نے ایکیوز کیا ہے اسرائیلی گورنمنٹ کو کہ یہ سارے گوگل کے اوپر ایڈز خرید کے اور مس لیڈ کر رہے ہیں لوگوں کو. یو این آر ڈبلیو اے, آپ کو پتا ہی ہے کہ پیلسٹینینز کے لیے یہ ایڈ دیتی ہے, یہ کمشنر ان کے جو ہیں جنرل فلپ لیزرینی, انہوں نے اپنے ایکس کے اوپر لکھا کہ اسرائیل جو ہے وہ ہماری ایجنسی کو ڈیفیم کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور ہم جو اتنا زیادہ ظلم چل رہا ہے وہاں پہ غزہ کے اندر اس کے لیے ہم ان کو کچھ ہیومینیٹیرین ایڈ دینا چاہتے ہیں, لیکن یہ جو ہیں بہت زیادہ یہاں پہ جو ہے وہ کر رہے ہیں, ڈس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں. اور یہ جو ہے یہ آرگنائزیشن یونائٹیڈ نیشنز کی آر ڈبلیو اے, یہ 1949 سے پیلسٹینینز کا خیال کر رہی ہے, اور انہوں نے کہا جی کہ لاسٹ منتھ انہوں نے ڈیناؤنس کیا تھا کہ یہ جو اسرائیلی گورنمنٹ کے سپوکس پرسن ہیں انہوں نے لیزرینی کو بھی ٹیررسٹ سمپتائزر کہا تھا, تو اس کے اوپر بھی یہ بڑے غصے ہوئے تھے. اس کے علاوہ ہزاروں ہی اسرائیلیز جو تھے وہ آج سٹریٹس کے اوپر تھے, کیونکہ 6 کیپٹیوز جو حماس کی پکڑ میں تھے وہ آج غزہ کے ایک ٹنل میں ان کی ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ ملی ہیں, اور اس کے بعد پبلک بڑی ناراض ہو گئی اور سڑکوں پہ آ گئی, کیونکہ انہوں نے کہا جی کہ ہم بڑے عرصے سے نتنیاہو کی گورنمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ سیز فائر جو ہے وہ کیا جائے حماس کے ساتھ اور اپنے کیپٹیوز کو گھر لے کر آیا جائے. یہ جو میجر روڈز جتنی بھی تھیں تل اویو کی اینڈ دا ونز لیڈنگ ٹو نتنیاہوز آفس ان ویسٹ جیروسلم, یہ ساری کی ساری آج بلاکڈ رہی. ہاسٹیجز اینڈ مسنگ فیملیز فورم جو تھا, جو کہ ان فیملیز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں جن کو کہ غزہ کی وار میں پکڑا ہوا ہے, انہوں نے کہا جی کہ پرائم منسٹر جو ہیں ڈائریکٹلی ان ڈیتھس کے ذمہ دار ہیں, اور ان کا جو فیلئر ہے کہ وہ کوئی ڈیل سیکیور نہیں کر سکتے تاکہ یہ فائٹ کو بند کیا جا سکے اور ہمارے جو لوڈ ونز ہیں وہ گھر آئیں, اس کی وجہ سے ان لوگوں کی ڈیتھس ہوئی ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم گورنمنٹ کے اوپر پریشر ڈالنا چاہتے ہیں اور اسی لیے ہم اسٹریٹس کے اوپر آئے ہیں, اور ہم پورے کے پورے کنٹری کو اب شٹ ڈاؤن کریں گے. کچھ نے کہا کہ نتن یاہو صاحب جو ہیں ڈیفینڈ کر رہے ہیں رائٹ ونگ پارٹیز کو جو کہ ان کی گورنمنٹ کا حصہ ہیں, اور اسی لیے کوئی کنسیشنز جو ہیں وہ حماس کو دینے کو تیار نہیں ہے تاکہ ان کی اپنی جو گورنمنٹ ہے کوالیشن میں وہ بھی بنی رہے. اسرائیل کی جو لارجسٹ ٹریڈ یونین فیڈریشن تھی جیسے کہ ہسٹراڈ ہے, یا کہ جو مینوفیکچرنگ میں ہیں, ہیلتھ کیئر میں ہیں, بینکس کے اندر ہیں, انٹرپرینیورز ہیں, یہ سب کے سب نے اسٹرائک کا حصہ بنے تھے, और इसराइल का जो बेन गुरियन एयरपोर्ट है इनका मेन एयर ट्रांसपोर्ट हब वो तक भी क्लोज रहा और बहुत ज्यादा आज नुकसान हुआ है क्योंकि कोई भी ट्रांसपोर्ट नहीं चल रही थी यहां पे और ना तो कोई प्लेन्स चल रहे थे। तो इन्होंने कहा जी कि गवर्नमेंट जो है उसकी मॉरल ड्यूटी थी कि कैप्टिव्स को घर लाते और इसको वॉर को रोक दे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। इसके ऊपर नतन्याहू साहब जो है उन्होंने सॉरी भी कहा है, लेकिन लोगों ने कहा जी ये इनका सॉरी जो है ये इनफ नहीं है। वॉशिंगटन पोस्ट की ये रिपोर्ट है जी और इसके मुताबिक यूएस, कतर और इजिप्ट ने अब फाइनल प्रपोजल जो है वो बना लिया है हॉस्टेजेस जो और को वापस करने के लिए और सीज फायर के लिए। और उन्होंने कहा जी कि ये डील जो है टेक इट और लीव इट है, इसके अलावा अब हम जो है बिल्कुल कोई डील नहीं करेंगे। लेकिन ऑफकोर्स जो अमेरिका है वो कॉन्स्टेंटली खड़ा हुआ है इनके साथ, इसराइल के साथ भी। इससे पहले भी जो डील आई थी उसके अंदर भी कहा गया था कि हम सीज फायर की तरफ जाएंगे, लेकिन इसराइल कुछ कंसेशन देने को तैयार नहीं था, हमास इस चीज को मानने को तैयार नहीं था कि भाई ये जिस वक्त तक ऑक्यूपाइड टेरिटोरी से नहीं निकलेंगे तो उस वक्त तक हम इनके साथ बात नहीं करेंगे। लेकिन अब ये जो छह हॉस्टेजेस जिनकी अब डेथ हुई है तो इसकी वजह से इसमें जो है वो एक अमेरिकन इसराइली भी था, हर्श गोल्डबर्ग पोलिन, तो उसकी वजह से अमेरिकन गवर्नमेंट के ऊपर भी बड़ा प्रेशर आ गया। तो वो कह रहे हैं जी कि इमीडिएटली यहां पे जो है हॉल्ट किया जाए, और वो कहते हैं जी कि ये तीनों ने अब फाइनलाइज डील कर ली है और अब ये प्रेजेंट करेंगे इसराइल और हमास को। एक जो अनोनिमसली एक सीनियर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का जो ऑफिसर है उसने वॉशिंगटन पोस्ट के साथ बात की है और उसने कहा जी कि वैसे तो उनको लगता है कि ये जो लॉन्ग निगोसिएशन इनकी हैं जो यूएस लेड, ये इमीडिएटली तो वो नहीं मानेंगे, लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं कि ये आखिरी जो इनकी ये कोशिश है इसमें इनको सक्सेस होए। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसने तो अभी तक कुछ क्लियरली इसके बारे में कहा नहीं है कि क्या आने वाले दिनों में ये डील जो है इट विल गो थ्रू, लेकिन ज्यादातर अभी तक इनके जो आपको पता ही है कि बहुत सारे अमेरिकन ऑफिशियल्स ने पिछले कई दिनों में बल्कि कई महीनों में काफी सारे मिडल ईस्ट के चक्कर लगाए हैं और वो कॉन्स्टेंटली कतारी और इजिप्शियन जो गवर्नमेंट्स हैं उनके साथ मिलकर बैठ के ये प्रपोजल्स बना रहे थे, तो वो चाहते हैं अब कि यहां पे सीज फायर हुए, क्योंकि जाहिर है कि ये इसका कुछ दिन पहले तो आपको पता ही है कि दायरा बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा था, ये वॉर जो था वो पहुंच गया था उस पर लेबनान के बॉर्डर पे, तो इसलिए अब दूसरों को भी, क्योंकि जाहिर है कि अरब स्टेट्स जो हैं छोटी छोटी स्टेट्स हैं तो अब वो चाहते नहीं थे कि ये ज्यादा जो है फैले, तो इसलिए अब देखेंगे ये आखिरी प्रपोजल जो है मानेगा हमास और जो इसराइल है कि नहीं, वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। आज लेबर डे की छुट्टी थी, यूएस के अंदर 10,000 होटल वर्कर्स जो हैं उन्होंने स्ट्राइक की और उन्होंने डिमांड किया जी कि हमको बेटर पे चाहिए और हमारी कंडीशन अच्छी करने की जरूरत है। 8 सिटीज जो थी बेसिकली अमेरिका के अंदर, बोस्टन, होनोलुलू, सैन फ्रांसिस्को, सैन डिएगो, सिएटल और भी कुछ जो स्टेट्स हैं वहां पे भी और शुरू हो सकते हैं अभी, जैसे कि बाल्टीमोर, न्यू हेवन, ओकलैंड एंड प्रोविडेंस, इधर भी तो इधर ज्यादातर जो यूनियंस थी उन्होंने कहा जी कि हमारी हालत अच्छी नहीं है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। खासतौर पे यूनाइट हियर यूनियन जो है एंड हिल्टन, हायत रिजेंसी एंड मैरियट होटल के चेन्स जो हैं उनके बीच में कोई भी जो है वो डील नहीं हो सकी है। ग्वेन मिल्स जो कि इंटरनेशनल प्रेसिडेंट हैं यूनाइट हियर के, वो कहते हैं जी कि ये जो होटल्स हैं ये अब कॉस्ट कटिंग मेजर्स कर रहे हैं और ये जो कॉस्ट कटिंग मेजर्स इन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे पेंडेमिक के जमाने में, ये उस जमाने से ये चलते आ रहे हैं और अब इसको ये रिवोक नहीं कर रहे हैं। और ये जो स्टैंडर्ड सर्विसेज होती थी गेस्ट की कि जिसमें ऑटोमेटिकली डेली इनका हाउस कीपिंग इनको मिलता था और होम सर्विस मिलती थी, वो उसको रिवाइव नहीं कर रहे हैं क्योंकि जाहिर है कि उसके अंदर बहुत सारे बंदों की जरूरत पड़ती थी। तो वो कह रहे हैं जी कि हमारी जो फैमिलीज हैं एज अ रिजल्ट उनके लिए इनफ नहीं है और हम जो है उनके लिए वी कांट केटर। और ये जरा नाम देखें, ये कितने बड़े नाम है, हिल्टन, हायत, मैरियट, ये चेन ऑफ होटल्स जो है वो कह रहे हैं जी कि अच्छे हमको कंडीशंस नहीं दे रहे हैं टू वर्क। और इसीलिए उन्होंने कहा जी कि अब हमारे लिए यहां पे रहना जो है बहुत मुश्किल हो गया है, हमारे जो वर्कलोड है वो पेनफुली इंक्रीज कर गया है जो हमारे बॉडीज को तोड़ रहा है और हमसे अब काम नहीं हो रहा है और ये फेयर नहीं है कि होटल्स वाले इतने ज्यादा प्रॉफिट्स बना रहे हैं और जो कमिटमेंट इनकी वर्कर्स के खिलाफ है उसको बिल्कुल पूरा नहीं कर रहे हैं और ना ही गेस्ट जो हैं उनको अच्छी ऑफरिंग्स जो हैं वो दे रहे हैं, तो इसलिए जो है वो सारे आज स्ट्राइक पे थे। अब आप देखें जरा कि लॉन्ग वीकेंड है और कितनी इंपॉर्टेंट वो है और वर्कर्स जो हैं वो काम नहीं कर रहे हैं और वो भी इतने बड़े ब्रांड्स के जो वर्कर्स हैं उनके। यूके जो है उसने आज बहुत मेजर अनाउंसमेंट की है और ये अगर आप आज ट्विटर के ऊपर ट्रेंड देखेंगे एक्स के ऊपर तो आपको ये काफी नजर आएगा। यूके ने आज अनाउंस किया है कि वो सस्पेंड कर रहे हैं, यस यू हर्ड इट राइट, यूके इज सस्पेंडिंग 30 आर्म्स एक्सपोर्ट लाइसेंसेज टू इसराइल, क्योंकि जो लेबर गवर्नमेंट है उसके ऊपर बेतहाशा प्रेशर था और ये एक इन्वेस्टिगेशन इन्होंने बिठाई थी और आज यूके की गवर्नमेंट ने कहा है कि यस हमको कुछ तो ऐसा एविडेंस नजर आ रहा है कि बहुत सीरियसली ह्यूमैनिटेरियन लॉज को वायलेट कर रहा है इसराइल, तो एज अ रिजल्ट हम इनको जो है ये सस्पेंड कर रहे हैं। सस्पेंशन जो है वो कवर करता है मिलिटरी एयरक्राफ्ट इंक्लूडिंग फाइटर एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स। फॉरन ऑफिस आज जो है यूके का उसने कहा कि ये 2 महीने से रिव्यू चल रहा था और उसके अंदर हमारा ये कंसर्न है कि इसराइल जो है बिल्कुल ह्यूमन जो ह्यूमैनिटेरियन लॉज को वायलेट कर रहा है गाजा में वॉर के लिए, और वो कहते हैं जी कि हमें वैसे ये कोई भी कंक्लूजन नहीं मिला है कि जो यूके आर्म्स एक्सपोर्ट लाइसेंसेस दिए हुए थे उसने किसी तरह से भी गाजा के अंदर कोई ज्यादा डिस्ट्रक्शन की है, लेकिन हमारा कंसर्न है कि सिविलियन डेथ्स बेतहाशा बढ़ गई हैं, इसलिए 1/10 ऑफ 350 एक्सटेंट लाइसेंसेज जो हैं लेकिन जिसके के अंदर नहीं इंक्लूडेड हैं पार्ट्स फॉर F-35 जॉइंट फाइटर्स स्ट्राइक प्रोग्राम, वो जो है हम अब क्लैंप कर रहे हैं। ये जो सारी की सारी डील है ये कोऑर्डिनेट की है फॉरेन ऑफिस ने यूके की विद बिजनेस डिपार्टमेंट एंड अटॉर्नी जनरल का जो ऑफिस है वहां पे। ये चीज जो है हेल्प करेगी नई गवर्नमेंट को, खासतौर पे उनके जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं डेविड लेनी, क्योंकि लेबर पार्टी के अंदर बहुत ज्यादा रिवोल्ट आ रहा था और अभी वो लोग डर रहे थे कि ये जो एनुअल कॉन्फ्रेंस में इनसे क्वेश्चन किया जाएगा कि क्यों तुम लोग अभी तक आर्म्स दे रहे हो इसराइल को, तो ये अब जरा उनको ठंडा करने में मदद मिलेगी। लेकिन यूके की अब बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, यूके की प्रॉब्लम ये आ गई है कि इस मूव से डायरेक्टली उनका कॉन्फ्लिक्ट जो है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से शुरू हो गया है, क्योंकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने रिपीटेडली कहा है कि हमको कोई भी पता नहीं चल रहा है कि इसराइल इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ जो है उसको वायलेट कर रहा है और एज अ रिजल्ट हम उनको आर्म्स एक्सपोर्ट सस्पेंड नहीं करेंगे। वाह 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 क्या बात है अंकल सैम, सलाम है आपको, आधी उनकी जो नस्ल है वो खत्म कर दी है तो अभी भी आपको ह्यूमन राइट्स वायलेशंस नहीं नजर आ रहे हैं, वेरी गुड शाबाश वेरी गुड। यूएनआरडब्ल्यूए पे 24 घंटे वो इतराज करते हैं, उनके ऑफिशियल्स को टेररिस्ट कहते हैं, उनको एड नहीं पहुंचने देते, दूसरे कंट्रीज की एड नहीं आने देते, बच्चे उनके मार दिए हैं, बूढ़े औरतें सब मार दिए हैं, तो बंदे तो मारे ही जा रहे हैं उनके, तो अभी भी आपको कुछ वायलेशंस नजर नहीं आ रहे हैं, क्या बात है। पता नहीं कौन सा चश्मा आप पहनते हैं, मुझे भी वो चश्मा चाहिए जिसमें मुझे भी वही नजर आए जो आपको नजर आ रहा है। आज एक और जो है बड़ी अफसोस की बात यह है कि आपको पता ही है कि जर्मन ये जो ऑटोमेकर है वॉक्सवैगन, बहुत बड़ा ये ऑटो मैन्युफैक्चरर है, इसने अब कहा है कि जर्मनी के अंदर अब हमारे लिए जो है फैक्ट्रियों को चलाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है और हम जो है सोच रहे हैं कि अपने प्लांट्स को जर्मनी में शट डाउन कर दें। तो अब आप सोचें जरा कि वॉक्सवैगन जो ग्रुप है अगर अपने फैक्ट्रीज जर्मनी में शट डाउन करेगा तो हजारों की तादाद में जो इनके साथ लेबर काम करती है वो तो बिल्कुल बेचारे जीरो पे आके बैठ जाएंगे। बाबा जी जो टॉप जर्मन इंडस्ट्रियल यूनिट है आईजी मेटल, उसने तो इसको बड़ा कंडेम किया और उन्होंने कहा जी कि ये तो तुम जर्मन जो गवर्नमेंट है उसकी फाउंडेशंस या जर्मनी की फाउंडेशंस को हिला दोगे अगर तुम लोग बंद करोगे, बिकॉज वॉक्सवैगन इज अ ह्यूज 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 ग्रुप। वॉक्सवैगन ग्रुप के जो सीईओ हैं ओलिवर ब्लूम, उन्होंने कहा जी कि यूरोपियन ऑटो इंडस्ट्री बहुत ज्यादा डिमांडिंग और कंपेटिटिव हो गई है और ये जो सिचुएशन है बहुत ज्यादा सीरियस हो गई है, इस इतने टफ एनवायरमेंट के अंदर हमारे लिए एग्जिस्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है और कंपेटिटर्स नए ईयू मार्केट में आ रहे हैं जो कि बहुत ही जरूर है कि चीप गाड़ियां बनाते हैं, जर्मन गाड़ियां तो आपको पता ही है कि जरा एक्सपेंसिव होती हैं, तो वो कहते हैं जी कि जर्मनी उसमें पीछे 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 जाता जा रहा है, तो हमको अब चाहिए कुछ हम जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको बंद करेंगे ताकि एक कॉम्प्रीहेंसिव रीस्ट्रक्चरिंग जो है वो कर सकें। तो रीस्ट्रक्चरिंग में क्या होता है जी, ले ऑफ्स होती हैं, तो बस वही फिर जो है अब होएगा वहां पे भी, तो इट इज क्वाइट सीरियस अ न्यूज। दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय राजा बादशाह जी। राजा बादशाह आपको पता ही है, वो कहते हैं जी अफोर्डेबल होम एंड ऑटो इंश्योरेंस मैं आपको देता हूं, तो आपको अगर अच्छी डील चाहिए और आप बहुत ढेर सारे आमिर की तरह $1775 बचाना चाहते हैं तो आप राजा बादशाह जी के पास जाएं, पिकरिंग में अब ये चले गए हैं। वो कहते हैं जी दो घर और दो गाड़ियां और एक घर है, दो घर और एक गाड़ी है वो उसका फंडा आपको वो खुद समझाएंगे, लेकिन अगर दो गाड़ियां और घर है तो वो आपको वो बड़ा वो कहते हैं जी लंबे पैसे आप बचाएंगे। तो आप ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए उनको कॉल कर लें 6472903773। اور جناب ولیج ٹیسٹ آنٹیریوز لارجسٹ لال پاکستانی بفے فیصل چٹھا صاحب ہوتے ہیں، دو ان کے ماشاءاللہ ریسٹورنٹس ہیں، ایک مسز ساگا میں ہے، اس کا نمبر ہے 9052323663 اور ایک ہے لیک شور پہ وہاں پہ اوکویل میں، تو اس کا نمبر ہے 9052262294۔ اور جناب چاندنی وکٹوریا بینکویٹ ہال 1400 لوگوں کی آپ یہاں پہ پارٹی بڑے آرام سے کر سکتے ہیں، آپ کا خود کا فیملی کا فنکشن ہے یا کہ آپ کا جو ہے وہ کارپوریٹ ایونٹ ہے تو آپ یہاں پہ ایونٹ کریں، بڑا ان کا زبردست ایکسپیرینس ہے، انڈین پاکستانی ویسٹ انڈین کوزین ہوتی ہے، ان کا نمبر ہے 6479653823، تو آپ جناب ان کو کر لیں۔ اچھا جناب پہلے پھر ہوں اچھی خبر تو پاکستان دا شروع کریں گے، فیر رون والی گبرا ٹھیک ہے جی، کیونکہ آپ یہ نہ کہیں کہ اچھی خبریں تو نہیں سنا، حالانکہ جتنی اچھی خبریں میں سناتی ہوں شاید ہی کوئی آپ کو سناتا ہوگا۔ بہرحال جی اچھی خبر، سب سے پہلے پاکستان کا جو اینوئل کور انفلیشن ہے جو کہ جس کو کہ جس سی پی آئی جس کو میجر کرتا ہے، وہ آج یعنی کہ انفلیشن سمپل ورڈز میں پاکستان میں نیچے آئی ہے، انفلیشن نیچے آئی ہے ٹو 9.6% ان آگسٹ، اور یہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ فرسٹ سنگل ڈیجٹ ریڈنگ ہے ان آلموسٹ 3 years، اور دس اگین دس ڈیٹا از فرام پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس۔ وہ کہتے ہیں جی کہ کمپیئر ٹو 11.1% ان جولائی، اگست میں 9.6% پہ انفلیشن تھی، ظاہر ہے کہ جو نیچے آئی 27.4% تھی اگست 2023 میں، تو آپ سوچ لیں کہ اور پچھلے سال اگست میں 27.4 اور اس اگست میں 9.6، سو ویری ویری گڈ نیوز۔ تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ پیک کر گئی تھی ابھی مئی کے مہینے میں 38% پہ، اور اس کو پھر وہ جو گورنمنٹ نے کچھ ریفارمز کیے تھے وچ ور مچ نیڈیڈ ریفارمز، جو کہ آئی ایم ایف کا بیل آؤٹ پروگرام لینے کے لیے تھے وہ کیے تھے، اس کی وجہ سے انفلیشن نیچے آئی ہے۔ سینسٹیو پرائس انڈیکس انفلیشن جو ہے دیٹ واز آلسو 10.8% ان آگسٹ کمپیئر ٹو 15.7% اے منتھ ارلیئر، یعنی کہ جولائی کے مہینے میں، اینڈ 27.9% ان آگسٹ 2023۔ تو انفلیشن جو ہے وہ ہولے ہولے نیچے آئی ہے، تو ظاہر ہے کہ اب حالت بھی لوگوں کی ذرا اچھی ہوئے گی۔ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے کہا جی کہ ہم ملک کے اندر اکنامک ریفارمز لے کر آ رہے ہیں اور اس کی امپلیمنٹیشن کے اوپر بھی بہت تیزی سے کام کر رہے ہیں، اور میں ساری کی ساری چیز کو خود مانیٹر کر رہا ہوں۔ یہ جو پازیٹو امپیکٹ آیا ہے انفلیشن نیچے آنے کی وجہ سے، اس کے اوپر انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا، انہوں نے کہا پہلے فچ اور پھر اس کے بعد موڈیز نے پاکستان کی جو کریڈٹ ریٹنگ ہے اس کو بھی اچھا کیا ہے، وچ شوز کے پاکستان کے اندر پازیٹو اکنامک انڈیکیٹرز جو ہیں نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ فیڈرل گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ تو اب بہت بڑے سکیل کے اوپر جو الیکٹریسٹی کے جو کنزیومرز ہیں ان کو منتھلی بلز پہ ریلیف بھی دے رہی ہے، اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی کہ اس مہینے میں گیس کی پرائسز جو ہیں وہ بھی ریڈیوس کی جائیں گی، اور انہوں نے کہا جی کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا بینیفٹ جو ہے کامن مین کو دیا جائے اور ہم اب اسٹیبلٹی کی طرف جائیں گے، اور گورنمنٹ جو ہے اکنامک فائنینشیل جو میری ٹیم ہے اس کے اوپر جو ہے کام کرے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک 5-member سلیکشن بورڈ کی فارمیشن کا بھی حکم دیا ہے ٹو اپوائنٹ سیکٹری انفارمیشن ٹیکنالوجی ٹیلی کام ڈویژن کے اندر تھرو اوپن مارکیٹ۔ یہ جو بورڈ ہے اس کو فارم کیا گیا انڈر دا چیئرمینشپ آف فیڈرل منسٹر فار اکنامک افیئرز احد چیما، اور اس کے اندر بورڈ کے اندر ہیں منسٹر آف اسٹیٹ فار آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام ڈویژن شہزہ فاطمہ خواجہ، سیکرٹری کیبنٹ ڈویژن کامران علی افضل، سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن انعام اللہ دھریجو، سیکرٹری منسٹری آف کامرس جواد پال، اور انہوں نے کہا جی کہ جتنے بھی ایلیجیبل کینڈیڈیٹس ہیں ان سے ہم نے اپلیکیشن منگوائے ہیں، ابھی تک جو ہے 15 جو لوگ ہیں ان کو شارٹ لسٹ کیا جا چکا ہے، تو اب پتہ نہیں ہے جی یہ کیا شارٹ لسٹ کریں گے اور کیسے یہ معاملات چلیں گے۔ بھرل جی کہتے ہیں ہم نے شارٹ لسٹ کر لی ہے۔ انسرٹنٹی جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے اب پاکستان میں اس سلسلے میں آئی ہوئی ہے کہ کیا گورنمنٹ کی پی ٹی آئی سے بات ہو رہی ہے یا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے بات ہو رہی ہے، پی ٹی آئی گورنمنٹ کو کہہ رہا ہے کہ ہم سے دوستی کرو یا گورنمنٹ پی ٹی آئی کو کہہ رہی ہے ہم سے دوستی کرو، یہ کنفیوژن جو ہے بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ لیکن اس کے اوپر بات کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر خان جو ہے انہوں نے ساری کی ساری چیز کو ڈینائی کیا، انہوں نے کہا کہ ہم کسی قسم کی کوئی بات چیت پی ایم ایل این سے نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن اب ہوا یہ کہ محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں وہ ایک فارمل ٹاک کر رہے تھے میڈیا کے ساتھ، جو کہ ہیڈ ہیں پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے، انہوں نے کہا جی کہ پولیٹیکل لیڈرشپ انکلوڈنگ نواز شریف جو ہے وہ سیم پیج پہ ہے ایز فار ایز کانسٹیٹیوشن از کنسرن۔ وہ کہتے ہیں جی میری ملاقاتیں رانا ثناء اللہ کے ساتھ ہوئی تھی اور میں نے ان کو بالکل یہی کہا تھا کہ کنٹری کو آگے لے کے جانے کے لیے پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کرنا ضروری ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہی ہے کہ پی ٹی آئی نے اچکزئی صاحب کو چوز کیا تھا کہ بھئی آپ بات بات چیت کرو. تو پی ٹی آئی جو ہے, لیکن مجھے افسوس ہے کہ اس نے پازیٹیولی ریسپانس نہیں دیا پرائم منسٹر صاحب کو, جنہوں نے کہا تھا کہ ہمارے سے آ کے بات چیت کرو. تو یہ جو بات ہے, یہ جو اپوزیشن کرنی ہوتی ہے ایسی باتوں کی, یہ صرف خان صاحب کر سکتے ہیں, پارٹی کے بندے نہیں کر سکتے. پارٹی کو ایک ڈائلاگ کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ پھر بیرسٹر گور نے بھی کہا کہ نہ تو ہم پی ایم ایل این کے ساتھ کسی قسم کی ٹاک میں انگیجڈ ہیں, نہ تو ہم نے کوئی میٹنگز آرگنائز کی ہیں. ہماری میٹنگ صرف نیشنل اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق کے ساتھ نیشنل اسمبلی کے مسئلے کے اوپر تھی. کوئی ڈسکشن ہماری دونوں پارٹیز کے بیچ میں ڈائلاگ کے سلسلے میں نہیں ہوئی ہے, اور نہ ہی ہمارے پی ٹی آئی کے کوئی ایم پیز جو ہیں وہ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ نہ تو ہم کر رہے ہیں نہ ہماری کوئی ڈیزائر ہے. اس کے اوپر پھر بات کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے اسپوکس پرسن روف حسن صاحب جو ہیں, ایک انٹرنیشنل میڈیا آؤٹ لیٹ کو انہوں نے ایک انٹرویو دیا, اور اس میں انہوں نے کہا جی کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو پالیٹکس سے دور رہنا چاہیے, اور ہم تو جو ڈائیلاگ ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اس میں سب کا بھلا ہے. لیکن ہاں, ہمیں انہوں نے ایکنالج کیا کہ پاکستان کے اندر اگر آپ نے سروائیو کرنا ہے تو پی ٹی آئی کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنی پڑے گی, اور ہمارے بیچ میں جو ڈیڈ لاک ہے وہ جلد ہی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. انہوں نے کہا جی کہ پاکستان کو اگر آگے لے کے جانا ہے تو جو پاکستان کی لارجسٹ پارٹی یعنی کہ جو پی ٹی آئی ہے اس کو اور اسٹیبلشمنٹ کو ایک پیج پہ ہونا پڑے گا. انہوں نے کہا جی کہ یہ کانفیڈنس جو بلڈنگ میجرز ہیں یہ ہم کو لینے پڑیں گے تاکہ ملک کے اندر انسٹیبلٹی ختم ہو اور انسٹیٹیوشنز جو ہیں اپنا کام کر سکیں. انہوں نے کہا جی لیکن اس میں پہلا سٹیپ یہ ہے کہ جو پارٹی کو الیکشنز میں مینڈیٹ ملا ہے اس کو ایکسیپٹ کیا جائے, یعنی کہ سب سے زیادہ ووٹس جو پی ٹی آئی کو ملے تھے اور پی ٹی آئی کو کنارے پہ لگایا گیا تھا. انہوں نے کہا جی کہ آرمی مستقل ہمیں کہہ رہی ہے کہ پی ٹی آئی 9 مئی کے لیے اپولوجائز کرے. ہم بالکل اپولوجائز نہیں کریں گے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے جو اس کو انویسٹیگیٹ کرے اور جو کوئی ایویڈینس ہے وہ سامنے لے کر آئے, کیونکہ مئی 9 میں انوالو نہیں تھی پی ٹی آئی. اب یہ جب باتیں سامنے آئی ہیں جی, تو اب اس کے اوپر فیڈرل منسٹر فار ڈیفنس خواجہ آصف صاحب جو ہیں ان سے بھی پھر سوال کیا گیا ایک ٹی وی شو میں. خواجہ آصف سے پوچھا گیا کہ بھئی کیا پی ایم ایل این کی کوئی میٹنگز ہو رہی ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ, اور کیا نواز شریف صاحب نے کوئی ڈائریکشن پارٹی کو دی ہے کہ دوسری پولیٹیکل پارٹیز انکلوڈنگ پی ٹی آئی جو ہے اس سے بات کرو تاکہ پاکستان کے مسئلے حل کیے جا سکیں. انہوں نے کہا جی کہ ہماری کسی قسم کی کوئی میٹنگ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہو رہی ہے, ہماری کوئی ڈسکشن ان کے ساتھ نہیں ہو رہی, اور نہ ہی کوئی نواز شریف صاحب نے اس طرح کی کوئی انسٹرکشن ہم کو دی ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے جو بھی کوئی نواز شریف صاحب سے باتیں کی ہیں اس میں دو ٹاپکس ہم نے ڈسکس کیے ہیں, ایک تو یہ کہ لوکل باڈیز کے الیکشنز پنجاب میں جو ہو رہے ہیں ان کو کیسے کنڈکٹ کیا جائے, اور الیکٹریسٹی کے بل جو ہیں ان کو کیسے لایا جائے. ویسے بھی جب تک پی ٹی آئی 9 مئی کی وائلیشن کے وائلنس کے لیے اپولوجائز نہیں کرے گی ہم ان کے ساتھ بات بالکل نہیں کریں گے. یہ 200% ان چیزوں کی اکاؤنٹبلٹی ہونی چاہیے. بھائی جان جڑا تھوڑا لاہور دے وچ ہویا سی اس کی اکاؤنٹبلٹی نہیں ہونی چاہیے, وہ جڑے بندے اتنے مرے گئے سن اتنے. اچھا جی, خیر وہ کہتے ہیں جی کہ جو پی ٹی آئی جو ہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی بالکل سنسیئر نہیں ہے ہمارے ساتھ ٹاکس کرنے کے لیے, اور پی ٹی آئی کے ممبر تو خود عمران خان صاحب کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں کیونکہ انتہائی یہ ایگوئسٹک اور اپرچونسٹس کا ایٹیٹیوڈ ہے. واہ 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 واہ, کیا بات ہے بھائی جان, نئی باتیں بتائی ہیں آپ نے. اچھا جی, پھر وہ کہتے ہیں جی کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے تو بڑی دفعہ پی ٹی آئی سے بات کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن جو عمران خان صاحب ہیں وہ بالکل اکڑے ہوئے ہیں, اور جس وقت اکانومی کے اوپر ان کے زمانے میں بھی بات ہوتی تھی تو خان صاحب کوئی جواب نہیں دیتے تھے. انہوں نے کہا جی خان صاحب تو اتنے ایروگینٹ اور بدتمیز ہیں کہ وہ جس وقت پاور میں تھے تو ہماری طرف کمر کر کے بیٹھے رہتے تھے, اور بڑا انہوں نے پیار محبت جو ہے وہ جنرل باجوا اور فیض حمید کے ساتھ بڑھایا ہوا تھا, تو ہمیں تو وہ حقیر سمجھتے تھے. تو ہم اب ان کو کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب بات کرو تو وہ بات بھی نہیں کر رہے ہیں. پیانے واٹ از دس گوئنگ آن. بہرحال جج خواجہ آصف صاحب نے یہ ساری باتیں کی ہیں. آج جناب میاں والی کی جو پولیس چیک پوسٹ ہے اس کے اوپر ایک اور ٹیررسٹ اٹیک ہوا ہے اس کے اندر, لیکن بہرحال اس کو بچا لیا لوگوں کو, لیکن دو پولیس مین جو ہیں بڑے گمبھیر انداز میں جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں. اس میں جو پولیس کی پریس ریلیز آئی ہے اس کے مطابق جو ہے 12-14 خوارج ٹیررسٹ جو تھے انہوں نے اٹیک کیا مقبول کھیل پولیس چیک پوسٹ کو راکٹس کے ساتھ, لیکن پنجاب پولیس نے یہ سارے اٹیکس روکے. पुलिस स्पोक्स पर्सन ने कहा कि जी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ऑफ मियां वाली डीएसपी ईसा खेल जो है वो उस स्पॉट पे पहुंचे और उन्होंने फिर सारी चीज का जायजा लिया। लास्ट मंथ आपको पता ही है कि 12 पुलिसमैन जो थे वो उनकी डेथ हुई थी और 7 इंजर हो गए थे जब बैंडिट्स ने उनके ऊपर रॉकेट्स के साथ अटैक किया था रहीम यार खान के अंदर। 2 पुलिस वैन्स जो हैं जिसके के अंदर 20 से ज्यादा पुलिस वाले थे वो रेन वाटर का जो रवीन था एक उसके अंदर ट्रैप हो गए थे और फिर इसका फायदा उठाते हुए बैंडिट्स ने इनके ऊपर रॉकेट से अटैक किया था और ये जो है 12 के करीब पुलिस अफसर बेचारे जो थे उनकी डेथ हो गई थी। एक अमेंडमेंट बिल जो है उसको जनाब प्रपोज किया गया है कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो तादाद है उसको बढ़ाया जाए। ये आज जो अमेंडमेंट बिल है ये सेनेट के अंदर सेनेटर अब्दुल कादर जो थे वो लेकर आए थे और उन्होंने कहा जी कि करंट 17 जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उससे ये नंबर बढ़ा के 21 पे किया जाए। ये जो डिस्कशन सेनेट में शुरू हुई इसको चेयर कर रहे थे चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी। सेनेटर अब्दुल कादर ने कहा कि हमें ज्यादा जजेस चाहिए क्योंकि हजारों ही केसेस जो है पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में और ज्यादा जज होंगे तो काम जो है वो तेजी से होगा और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं इसके अंदर लार्जर बेंचेस जो हैं वो भी कॉन्स्टिट्यूट किए जा सकेंगे। इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट की कैपेसिटी को बढ़ाया जाए ताकि लोगों को टाइमली जस्टिस मिले। ये बिल जो है लेकिन जाहिर है कि इसको अपोज किया पीटीआई ने। पीटीआई के सेनेटर अली जफर ने कहा कि ये पोटेंशियल मिसयूज आप जुडिशियल रिफॉर्म्स में करेंगे और ये जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड ये आपकी अटेम्प्ट है और ये मैनिपुलेट करेगी जुडिशरी को फॉर योर ओन मोटिव्स। उन्होंने कहा जी कि सिर्फ 2 जजेस को बढ़ाने की जरूरत है और यानी कि ये जो 7 जजेस बढ़ाने के बजाय 2 और आप कर लें तो उससे भी काम जो है काफी तेजी से चलेगा। फेडरल लॉ मिनिस्टर जो आजम नजीर तारड़ थे फिर उन्होंने इसके ऊपर बात करते हुए कहा जी कि हां बिल्कुल हम ये चीज तो सोचते हैं कि जजेस की का जो नंबर है उसको इंक्रीज करने की जरूरत है लेकिन इसको वाकई बहुत केयरफुली कंसिडर करने की जरूरत है तो इसके ऊपर एक डिस्कशन होगी। तो अब जनाब डिस्कशन होगी इसके ऊपर। पाकिस्तान के अंदर मोबाइल फोन सिम्स जो हैं उनके यूजर्स को कहा गया है कि अगर आपके कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी आपकी जो है वो एक्सपायर हो गई है तो आपके ये सिम जो हैं पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशंस अथॉरिटी सस्पेंड करेगी। उन्होंने कहा जी ये सिम्स अगर एक्सपायर हुई थी बिफोर 2017 तो आप इनको रिन्यू करा लें और अपने आईडी कार्ड जो हैं उनको फौरन जो है ये रिन्यू कराएं ताकि अवॉइड कर सकें आपके सिम को ब्लॉक करने के लिए। पीटीए ने बेशुमार जो है फेक सिम्स उनको ब्लॉक किया है और कैंसिल किए हैं सीएनआईसी इन द फर्स्ट फेज जो इन्होंने अभी अपना एक ऑपरेशन इनिशिएट किया है। उन्होंने कहा कि सिंस अगस्त 16 ओवर 69,000 इलीगल सिम्स जो है हमने ब्लॉक किए हैं और ये ब्लॉक हमने उस बेस पे किए हैं जो डाटा हमारे पास नादरा ने भेजा था। इन्होंने कहा जी कि हम वो तमाम सिम्स जो हैं उनको टर्मिनेट करेंगे अगर वो किसी डेड पर्सन के नाम में भी हैं और ये थर्ड फेज में काम किया जाएगा। वो कहते हैं जी आपकी सिम बंद करने से पहले हम आपको मैसेज भेजेंगे कि आप अपना रेलेवेंट डाटा अपडेट कर लें और फेक सिम्स जो हैं वो बहुत ज्यादा यूज हो रही हैं इलीगल एक्टिविटीज में इंक्लूडिंग टेररिज्म एंड फाइनेंशियल फ्रॉड तो इसलिए जो है वो हम इसको सबको बंद कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा जी बहुत दिनों से आपने हमसे मणिपुर का नाम नहीं सुना था। मणिपुर में वायलेंस जो है वो इंडिया के मणिपुर में वायलेंस वापस आ गई है। आज फिर से बहुत ज्यादा वायलेंस वहां पे हुई जिसमें कि 2 लोगों की ऑफिशियल जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक 2 लोगों की डेथ हुई है हो सकता है ज्यादा भी हुई हो और 6 लोग जो है बड़े गंभीर अंदाज में वहां पर जख्मी हुए हैं क्योंकि एथनिक वायलेंस जो कि पिछले साल मई में शुरू हुई थी मई 2023 में वो फिर से अब जो है वो अपना सर उठाना शुरू हो गई है। सैकड़ों ही लोग इसके अंदर मरे थे। थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर डिस्प्लेस्ड और इसने एथनिक लाइंस पे इस स्टेट को बहुत ज्यादा डिवाइड किया था। कुछ असल में ये चीजें भड़की इसलिए हैं कि कुछ ऑडियो टेप्स जो हैं वो पब्लिक में आई हैं जिसमें कि सुनाई दिया जा रहा है कि जो चीफ मिनिस्टर हैं इलाके के एन वीरन सिंह और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व दिखती है और साउंड की जा सकती है वायलेंस के अंदर। गवर्नमेंट का कहना है कि ये टेप्स जो हैं सारी की सारी डॉक्टर्ड हैं और ये बिल्कुल इसमें ठीक नहीं है। अलबत्ता जी ऑपोजिशन ने कहा कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसका नोटिस लेना वीरन सिंह साहब को बनता है। इसके साथ साथ एक जो आदमी है अशरफ अली सैयद हुसैन 72 इयर्स जो कि अक्सर वो कहते हैं जी कि मैं जल गांव से कल्याण की तरफ मैं सफर करता हूं। इस दफा जब मैं कल्याण सॉरी जलगांव में बैठा कल्याण की तरफ जाने के लिए, तो कुछ एक ग्रुप ऑफ लड़के जो थे 20 साल की उम्र में थे, जो कि मुंबई जा रहे थे पुलिस का एग्जाम देने के लिए, उन्होंने मुझे कहा कि मैं अपने डब्बे खोलूं, और जब मैंने अपने डब्बे खोले तो उसके अंदर बफलो मीट था, तो उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया, मेरे मुंह पे थप्पड़ मारे। आप सोचें 72 ईयर ओल्ड मैन, उसके मुंह पे चेस्ट पे जो पेट है उसमें उसको घूसे मारे, ठुड्डे मारे, और उनको गालियां दी बहुत सारी। फिर उसके बाद उसका फोन ले लिया और उसी के ऊपर जो असॉल्ट हो रहा था उससे फिल्में बनाई और सोशल मीडिया पे अपलोड किया। एक ने तो कहा इसको ट्रेन से उठा के बाहर फेंको। बहरहाल जी, जिस वक्त ये उतरा वहां पे कल्याण, तो इसने जाके थाने रेलवे पुलिस स्टेशन के अंदर शिकायत की। ये जो तीनों लड़के थे, आकाश अवध, नीलश आहिर और जयश मोहित, इन सबको अरेस्ट किया गया है, लेकिन जाहिर है कि इनको ज्यादा सख्त सजा नहीं दी गई। बेलेबल जो सेक्शन थे उनके अंडर इनको चार्ज किया था, फिर अगले ही दिन इनको छोड़ दिया गया। इसके साथ साथ हिंदुस्तान में एक स्क्रैप डीलर जो है, ही वॉज बीटन टू डेथ इन हरियाणा, चरखी दर्दी, क्योंकि उसके ऊपर भी इल्जाम यह था कि इसने बीफ खाया है। तो मुसलमानों के खिलाफ जनाब काफी गर्मा गर्मी है हिंदुस्तान में। इस सारी ये जो तीनों वाकयात हैं, खासतौर पर ये जो दो वाकयात हैं सैयद अशरफ का और ये जो स्क्रैप डीलर था, इसके ऊपर राहुल गांधी जो हैं उन्होंने बड़ा जो है वो भड़क गए और उन्होंने बड़ा ब्लास्ट किया बीजेपी की गवर्नमेंट को। उन्होंने कहा ये जो वायलेंस अगेंस्ट मुस्लिम्स है ओवर सस्पिशन ऑफ बीफ कंजम्पशन, ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल और उसको बिल्कुल नहीं माना जाएगा। जो लोग पावर में चले गए हैं हेट्रेड की सीढ़ी चढ़ते हुए, और वो हेट्रेड को एज अ पॉलिटिकल वेपन यूज करते हैं और मुल्क के अंदर एक खौफ का जो है वो राज रखना चाहते हैं, इन एलिमेंट्स को बिल्कुल पसंद नहीं किया जाएगा। ये हेटफुल एलिमेंट्स जो हैं ये मॉब की सूरत में इसलिए इतना ओपनली जो है रूल ऑफ लॉ को चैलेंज करते हैं क्योंकि इनको बढ़ावा दिया जाता है। ये मिस्क्रियंट्स जो हैं ये बहुत ज्यादा बहादुर हो गए हैं बीजेपी की गवर्नमेंट की वजह से, और ये वायलेंस करते हैं माइनॉरिटीज के अगेंस्ट। इनको एक फ्री हैंड, इनको लगता है कि बीजेपी